ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद अध्याय एक श्लोक संख्या चार। इस अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण का अवतार परिचय। निवृत्ता तरसै उपगीयमानात् भव औषधाता छोत्र मनः अभिरामात् कह उत्तम श्लोक गुण अनुवादात् पुमान विरज्येत विना पशुघ्नात्। निवृत्ततरसै उपगीयमानात् भवौषधा छोत्र मनोभिमानात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत विना पशुघ्नात्। निवृत्त तरसै उपगीयमानात् भव औषध छोत्र मनोभिरामात् कव उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत बिना पशुधनात्। निवृत्त तरसै उपगीयमानात् वसोध चोत्र मनोभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत बिना पशुधनात्। निवृत्ता मुक्त तरसै काम या भौतिक कार्यों से उपगीयमानात् वर्णित या गाय जाने वाला भव औषधाता भौतिक रोग की सही औषधि से छोत्र कानों से सुनने की विधि मनः मन के लिए विचार का विषय अभिरामात् ऐसे महिमा वर्ण की सुहावनी ध्वनि से कह कौन उत्तम श्लोक भगवान का गुण अनुवादात ऐसे कारों का वर्णन करने से पुमान मनुष्य विरज्येता अपने को विलग रख सकता है विना रहित पशुधनाता कसाई अथवा अपने आप को ही बध करने वाले से। अनुवाद उत्तर पर श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज की भगवान की महिमा का वर्णन परंपरा पद्धति से किया जाता है, अर्थात यह आध्यात्मिक गुरु से शिष्य तक पहुंचाया जाता है। ऐसे वर्णन का आनंद उन लोगों को मिलता है जो इस जगत की मिथ्या क्षणिक वर्णन में रुचि नहीं रखते। भगवान का गुणगान जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे बद्ध जीवों के लिए उपयुक्त औषधि है। अतएव कसाई पशुघानी या अपने को ही मारने वाला आत्मघाती के अतिरिक्त भगवान की महिमा को सुना कौन नहीं चाहेगा। तात्पर्य आप पढ़ेंगे, तात्पर्य काफी बड़ा है, 3-4 पेज का है, सुनिए ध्यान से।
तात्पर्य, भारत में सामान्य लोगों के बीच यह आम प्रथा है कि बारंबार जन्म मरण के रोग से छुटकारा पाने के लिए वे भगवद गीता या श्रीमद भागवतम से कृष्ण के विषय में सुनते हैं। यद्यपि अब भारत पतित हो चुका है, किंतु यह समाचार मिलते ही कि अमुक व्यक्ति भगवद गीता या श्रीमद भागवत पर बोलेगा, अब भी हजारों लोग सुनने के लिए एकत्र हो जाते हैं, किंतु यह श्लोक इंगित करता है कि भगवद्गीता तथा श्रीमद् भागवत का ऐसा पाठ ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए जो भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हो चुके हों, निवृत्त तरशयी। इस जगत में ब्रह्मा से लेकर एक शूद्र चींटी तक सारे जीव इंद्रिय भोग की भौतिक इच्छा से पूर्ण है और हर प्राणी इंद्र तृप्ति में लगा हुआ है। किंतु इस तरह लगे रहने पर कृष्ण कथा के महत्व को, चाहे वह भगवद गीता के रूप में हो चाहे श्रीमद् भागवत के रूप में, पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। यदि हम मुक्त पुरुषों के मुख से भगवान की महिमा के विषय में सुने तो इससे भवबंधन से अवश्य छूट सकते हैं, किंतु श्रीमद् भागवत के पेशेवर वाचकों से सुनने पर वास्तव में मुक्ति प्राप्ति की में कोई सहायता नहीं मिल सकती है। कृष्ण कथा अतीव सरल है। भगवद गीता में कहा गया है कि कृष्ण परमेश्वर हैं। वह स्वयं बतलाते हैं, मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजया। हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। भगवद गीता 7.7। केवल इतना ही जान लेने से कि कृष्ण परमेश्वर हैं मुक्त हुआ जा सकता है, किंतु इस कलयुग में लोग असली लाभ से वंचित रहते हैं, क्योंकि वे ऐसे धूर्त व्यक्तियों से श्रीमद् भगवद गीता सुनना पसंद करते हैं जो भगवद गीता का को यथारूप में प्रस्तुत ना करके उसे अपनी इच्छा अनुसार तोड़ते मरोड़ते हैं। बड़े बड़े विद्वान, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक तथा वैज्ञानिक अपने ही दूषित तरीके से भगवद गीता पर प्रवचन करते हैं और सामान्य लोग इन्हीं से सुनते हैं, क्योंकि वे किसी भक्त से भगवान के गुणानुवाद को सुनने में रुचि नहीं रखते। भक्त वह है जो भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम का पाठ करते हुए कोई अन्य प्रयोजन नहीं रखता। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको सलाह दी है कि सिद्ध स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ही भगवान का गुणानुवाद सुना जाए। भागवत परोदीय भागवत स्थाने। जब तक कोई कृष्ण भावनामृत विज्ञान में सिद्धात्मा न हो, तब तक नवदीक्षित को चाहिए कि वह उससे भगवान के विषय में सुनाने के लिए ना कहे, क्योंकि शील सनातन गोस्वामी ने पद्म पुराण में निम्नलिखित उद्धरण देते हुए ऐसा करने से मना किया है। अवैष्णव मुखोद्ग्रीणम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्टम यथापय। जो वैष्णव आचरण वाला ना हो उसे कथा नहीं सुननी चाहिए। वैष्णव तो निवृत्त तृष्ण होता है, उसका कोई भौतिक उद्देश्य नहीं होता, क्योंकि उसका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण महामृत का प्रचार करना होता है। तथा कथित विद्वान, दार्शनिक तथा राजनीतिज्ञ स्वार्थवश भगवद गीता के अर्थ को तोड़ मरोड़ कर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इसलिए यह श्लोक सावधान करता है कि कृष्ण कथा का वाचन वही करे जो निवृत्त तृष्ण हो। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत के आदर्श उपयुक्त वाचक हैं और मृत्यु का सामना करने के पूर्व अपना राजा तथा परिवार को किसी उद्देश्य से छोड़ने वाले परीक्षित महाराज आदर्श श्रोता हैं। श्रीमद् भागवत का सुयोग्य वाचक बद जीवों को सही औषधि भवौषधि प्रदान करता है। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन ऐसे योग्य प्रचारकों को प्रशिक्षण करने में प्रयत्नशील है तो सारे जगत में श्रीमद् भागवत तथा भगवद गीता का वाचन कर सके, जिससे विश्वभर में सामान्य जन इस आंदोलन का लाभ उठा सके और भौतिक संसार के तीनों तापों से छूट सके। भगवद गीता के आदेश तथा श्रीमद् भागवत के वर्णन इतने मनोहारी हैं कि भौतिक संसार के तीनों तापों से तप्त प्रायः प्रत्येक व्यक्ति इन ग्रंथों में से भगवान की महिमा को सुनना चाहेगा और मुक्ति के मार्ग में लाभ उठाना चाहेगा। किंतु दो प्रकार के लोग कभी भी भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत के संदेश को सुनने में रुचि नहीं लेंगे। एक वे जो आत्महत्या करने पर तुले हैं और दूसरे वे जो अपने स्वार्थ के लिए गौओं तथा अन्य पशुओं का वध करने में तुले हुए हैं। यद्यपि ऐसे लोग भागवत सप्ताह के समय श्रीमद् भागवत सुनने का दिखावा करते हैं, किंतु यह कर्मी जनों की दूसरी सृष्टि है जिन्हें ऐसे कृत्य से कोई लाभ नहीं मिल सकता। इस संबंध में पशुघ्ना शब्द महत्वपूर्ण है। पशुघ्न का अर्थ है कसाई। उच्चतर लोकों में जाने के लिए कर्मकांडी व्यक्तियों को यज्ञ करते समय पशुओं का वध करना होता है। इसलिए भगवान बुद्ध देव ने वेदों के प्रमाण के तिरस्कार किया, क्योंकि वे पशु बलि को रोकना चाहते थे जिनकी वैदिक अनुष्ठानों में संस्तुति की गई है। निंदसि यज्ञ विदेरह श्रुति जातम सदया हृदय दर्शित पशु घातम केशव धृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। गीत गोविंद। यद्यपि वैदिक उत्सवों में पशु बलि को मान्यता प्राप्त है, किंतु ऐसे उत्सवों के लिए जो व्यक्ति पशुओं का वध करते हैं वे कसाई पशुघ्न माने जाते हैं। भला कसाइयों को कृष्ण भामरावित में कैसे रुचि हो सकती है, जब उन्हें भौतिक आकर्षण मिला रहता है। उनकी एकमात्र रुचि नश्वर शरीर के लिए सुविधाएं उत्पन्न करने में होती है। भोग ऐश्वर्य प्रसत्तानां तया प्रतचेतसां व्यवसात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति आसक्त हैं और जो ऐसी वस्तुओं में मोहग्रस्त रहते हैं, उनके मन में भगवान की भक्ति के लिए दृढ़ संकल्प नहीं बन पाता। भगवत गीता 2:44। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया शुनिया विष खाइनु। जो कृष्ण भावना भावित नहीं है और इस तरह जो भगवान की सेवा में अपने को नहीं लगाता, वह भी पशुघ्न है, क्योंकि वह जानबूझकर विष पीता है। ऐसे व्यक्ति को कृष्ण कथा में रुचि नहीं होती, क्योंकि उसमें इंद्र तृप्ति की लालसा शेष रहती है, वह निवृत्त कृष्ण नहीं होता। जैसा कहा गया है, त्रैवर्गी कास्ते पुरुषा विमुर्वा हरि मेधसा। जिन्हें त्रिवर्ग अर्थात धर्म अर्थ तथा काम में रुचि रहती है, वे भौतिक पद प्राप्त करने तथा उसके द्वारा इंद्र तृप्ति के लिए अपनी अच्छी अच्छी सुविधाएं प्राप्त करने में निमित्त धार्मिक होते हैं। ऐसे लोग अपने को जानबूझकर जन्म मरण के चक्र में डालकर अपनी हत्या करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में कभी भी रुचि नहीं ले सकते। कृष्ण कथा के लिए वक्ता तथा श्रोता होना चाहिए। ये दोनों कृष्ण भावनामृत में तभी रुचि ले सकेंगे जब उन्हें भौतिक कथाओं में रुचि ना हो। वास्तव में यह हर कोई देख सकता है कि जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं, उनमें यह प्रवृत्ति स्वतः उत्पन्न होती है। यद्यपि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्तगण तरुण व्यक्ति है, किंतु वे भौतिकवादी अखबार पत्रिकाएं इत्यादि नहीं पढ़ते, क्योंकि उन्हें ऐसी कथाओं में कोई रुचि नहीं होती। निवृत्त दर्शय, वे देहात्म बुद्धि का सर्वथा परित्याग कर देते हैं। गुरु उत्तम श्लोक अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विषयक कथाओं को कहता है और शिष्य ध्यान से उन्हें सुनता है। जब तक दोनों भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं हो लेते, तब तक उन्हें कृष्ण भावनामृत की कथाओं में रुचि नहीं हो सकती। गुरु तथा शिष्य को कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ समझने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि कृष्ण को समझने तथा कृष्ण के विषय में बातें करने मात्र से ही व्यक्ति पूर्णतया विद्वान बन सकता है। यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेवं विज्ञातं भवति। भगवान हर एक के हृदय में आसीन रहते हैं और अपनी उनकी कृपा से भक्त तो भगवान से ही सीधे आदेश प्राप्त करता है। जैसा कि भगवद गीता 15:15 में भगवान ने कहा है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वे रहमेव विद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। मैं हर एक के हृदय में आसीन हूँ और मुझी से स्मृति तथा ज्ञान विस्मृति उत्पन्न होते हैं। सारे वेदों के द्वारा मैं ही वेद्य हूँ, मैं ही वेदांत का रचयिता और वेदों को ज्ञाता हूँ। कृष्ण भावनामृत इतना उच्च है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति गुरु के निर्देशन से भगवद गीता श्रीमद भागवत तथा अन्य वैदिक साहित्य में प्राप्त कृष्ण कथा को पढ़कर तुष्ट रहता है। जब कृष्ण के विषय में केवल बातें करना इतना सुहावना लगता है, तो फिर कृष्ण की सेवा करना कितना सुहावना होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। जब मुक्त गुरु तथा उनके उसके शिष्य के मध्य कृष्ण कथा में पर वार्ताएं होती है, तो अन्य लोग भी कभी कभी इन कथाओं को सुनकर लाभ उठाते हैं। ये कथाएं जन्म तथा मृत्यु के चक्र को रोकने में रामबाण औषधि का कार्य करती है। बारंबार जन्म तथा मृत्यु का चक्र, जिससे मनुष्य को पुनः पुनः विभिन्न शरीर ग्रहण करने पड़ते हैं, भव या भवरोग कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति इच्छा या अनिच्छा से कृष्ण कथा सुनता है, तो उसका भवरोग अर्थात जन्म मरण का रोग निश्चय ही जाता रहता है। इसलिए कृष्ण कथा को भव औषधि, जन्म मृत्यु के चक्र को रोकने की औषधि कहा गया है। कर्मी जन जो भौतिक इंद्र तृप्ति में आसक्त है, सामान्यता अपनी भौतिक इच्छाओं का परित्याग नहीं कर सकते, किंतु कृष्ण कथा ऐसी रामबाण औषधि है कि कृष्ण कथा सुनने के लिए प्रेरित होने पर वह इस रोग से निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है। इसके ज्वलंत उदाहरण ध्रुव महाराज हैं, जो अपनी तपस्या के बाद अत्यंत तुष्ट थे। जब भगवान ने उन्हें वर देना चाहा, तो ध्रुव ने वर लेने से मना कर दिया। स्वामिन कृतार्थो अस्मि वरम न जाचे। हे प्रभु, मैं पूरी तरह से तुष्ट हो गया हूँ, मुझे इंद्र तृप्ति के लिए कोई वर नहीं चाहिए। हम देख रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन में युवकों तथा युवतियों तक ने अपनी बुरी से बुरी आदतें जैसे अवैध यौन मांसाहार नशा तथा जुआ खेलना छोड़ दी है। चूंकि कृष्ण भावनामृत इतना प्रबल है कि इससे उन्हें पूर्ण संतोष मिलता है, अतएव वे भौतिक इंद्र तृप्ति में रुचि नहीं लेते।
प्रभुपाद जी ने बहुत बड़े तात्पर्य में इस बात को समझाया है। कि भारतवर्ष में ज्यादातर लोग सोचते हैं कि भगवद गीता या श्रीमद् भागवत कथा सुनने से जन्म के रोग से छुटकारा मिल जाता है। वो सोचते हैं कि जैसे परीक्षित महाराज कथा सुन करके अपना उद्धार कर लिए, तो हम भी इसी तरह से भगवत कथा सुन करके अपना उद्धार कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आप कथा किससे सुन रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से परिपूर्ण है, विषयों में लिप्त है, जिसका उद्देश्य ही धन कमाना है, अपनी इंद्र तृप्ति करना है, ऐसे लोग अगर कथा सुनाते हैं तो ऐसे कथा वाचकों से कथा श्रवण से कोई लाभ नहीं। वो किस परंपरा से आया हुआ है, उसकी क्या परंपरा है, ये भी देखना चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक है, तब कथा उससे कथा सुनना चाहिए। जैसे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी महाराज जी से कथा सुने, तो इस कलयुग में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य बता रहे हैं कि भारत के लोग अब क्या हो गए हैं, पतित हो गए हैं। हमारे देश में भी सबसे ज्यादा पशु वध हो रहा है। पता है आप लोगों को, गाय का जो मांस है सब ज्यादा हमारे भारतवर्ष से ही सप्लाई होता है, और हम गर्व करते हैं कि मेरा भारत महान। गलत। जिस गाय के नाम से गोलोक बसा है, गोलोक ऐसा लोक जहां गाय रहते हैं, सर्वी गाय रहती है। भगवान स्वयं यहां पर आते हैं, गायों के बीच में रहते हैं, गाय चराते हैं, गाय की सेवा करते हैं। गोमाता, उनका नाम गोपाल रखा, गोविंद रखा, ये सब भगवान के नाम है। लेकिन उन्हीं गांव की दुर्दशा उसी देश में हो रही है जिस देश में भगवान कृष्ण आए और अभी भी हरिनाम के रूप में प्रकट हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वही भारतवर्ष के लोग क्या हो गए हैं, पतित हो गए। पतित उसे कहा जाता है जो धर्म शास्त्र और कृष्ण के अनुसार अपना जीवन नहीं जीता। वो पतित है, और उन पतितों को भी पवित्र कौन करता है, शुद्ध भक्त। जैसे श्री प्रभुपाद जी भगवान श्री कृष्ण का संदेश, चैतन्य महाप्रभु का संदेश लेकर के पाश्चात्य देश में गए, जहां के लोग भौतिकता में डूबे हुए हैं, सब प्रकार के विषय भोग में लगे हुए हैं, और उनके बीच जाकर के प्रभुपाद जी ने अपना एसोसिएशन देख करके हरिनाम के माध्यम से, भगवद गीता के माध्यम से भगवान का प्रसाद खिला करके उनको भी क्या किया, उन पतितों का भी क्या किया, पवित्र बना दिया। तो भगवान की कथा जो है वो पतितों का उद्धार करने के लिए। तो पतित से पतित व्यक्ति फिर भगवान की कथा सुन करके पवित्र बन सकता है, जन्म चक्र से छोड़ सकता है। लेकिन कथा किससे सुनता है वो महत्वपूर्ण है। और आजकल आप देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े कथावाचक हैं सब, जितने भी कथावाचक आप देख रहे हैं टेलीविजन में, इससे पेड होते हैं। ये 25,000, 35,000, 50,000 लाख रुपए दे करके अपना सीडी पकड़ा देते हैं और उनका आता रहता है कथा, राइट? बड़े बड़े कथावाचक जेल में भी हैं, जो अपने आप को कृष्ण कहते थे कि मैं कृष्ण हूं। बड़ी भीड़ होती थी उनके यहां, और अभी भी भीड़ होती है। संगीत में कथा, आप कथा करिए, लेकिन कथा का उद्देश्य क्या है? आप अगर कथा कराने जाइए, जैसे परिचित महाराज जो कथा सुन रहे थे, तो कोई संगीतक नहीं बैठे थे उनके साथ। आप सुनिए ना, रुक्मणी जी का विवाह नहीं करा रहे थे। आजकल के कथावाचक रुक्मणी का विवाह भी कराते हैं, सारा धन दहेज जो है बटोर ले जाते हैं अपने घर के। तो ये जो कथावाचक हैं, जो कथा अब चल रही है, इनका उद्देश्य श्रोताओं का उद्धार करने का नहीं, क्योंकि उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। हमारे प्रभुपाद जी ने यही कथा इस्कॉन के द्वारा जो कथा देखो गुजरे, लोग उससे जुड़ते हैं और उनमें परिवर्तन दिखता है, दिखता ही नहीं दिखता। ये बहुत आवश्यक है। बड़े बड़े मंदिर हैं, जिस देश की राजधानी दिल्ली में हम रहते हैं, यहां एक से बढ़कर एक मंदिर है। लक्ष्मीनारायण मंदिर, जो बिरला जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है, गौरी शंकर मंदिर, किसी भी मंदिर में आप चले जाइए और आरती के समय जाइए, और तब देखिए कि वहां कैसे आरती होती है। कोई रहता ही नहीं, कीर्तन करने वाला तो कोई रहता ही नहीं। जो पेड़ कुछ पुजारी हैं वो अपना करते हैं, और आजकल तो ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई है, बटन दबा देते हैं सब बजने लगता है। आजकल ऐसा हो गया, वो सब बैठे रहते हैं मंदिर बना करके खोल करके चरणामृत देने के लिए बस। और जो पंडित पुजारी हैं, खाली समय वो शादी ब्याह जनपत्ति बनाने में लगे हुए हैं। सच है कि नहीं सच है? यही सच है। उनका उद्देश्य नहीं है कि हम घर घर जाकर के लोगों को भगवत गीता दें और उनके जीवन को क्या करें, परिवर्तित करें। उनसे इसका कोई लगन नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी जब इस्कॉन की स्थापना की, तो कहा ये जो मंदिर है ये वो शिक्षा देने के लिए है कि आप हमारे मंदिर से आइए और कैसे भगवान को प्रसन्न किया जाए, भगवान की कैसे पूजा की जाए, भगवान कैसे आरती करना चाहिए, भगवत गीता को पढ़कर कैसे अपना उद्धार करना है, ये शिक्षा देने के लिए ये मंदिर बना है। यही अंतर है। कई मंदिर तो आप जाएंगे, भगवान को ताजा फूल हार नहीं मिलता, ड्रेस चेंज ही नहीं होता। जन्माष्टमी में एक बार चेंज कर दिया और उसके बाद चंदन किया, वो जो प्लास्टिक का आर्टिफिशियल गार्लैंड पहना देते हैं और शीशा में बंद कर देते हैं। ऐसे भी आप देखते हैं, हनुमान जी बैठे हैं लेकिन केला के तरस रहे हैं, एक केला भी नहीं खिलाते उनको, केला और फूल के लिए लोग तरस रहे हैं। हमने खुद देखा है ऐसे संबंध जाए, और ऐसे जो उनके जो पंडित हैं उनसे आप क्या कथा सुनेंगे, जो चाय पी रहे हैं, पान खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं। वही इसमें समझाया जा रहा है कि आप कथा किससे सुन रहे हैं। जो आप खुद सोचे, जो व्यक्ति खुद टेंशन में है और दूसरों को टेंशन कैसे दूर कर सकता है, जो खुद माया में लिप्त है, भोगों में ऐसे युक्त है और दूसरों को भोग से मुक्त कैसे कर सकता है, कर सकता है? नहीं कर सकता है। जो स्वयं आनंद में रहता है वही आनंद दे सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी बड़े अच्छे ढंग से समझाते हैं कि जब तक हम कृष्ण भावना भावित नहीं बनेंगे तब तक हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। अब मानुष जन्म पाइया राधा कृष्णाए भजिया जानिया सुनिया विष खैन। और आजकल तो बाबाओं की बाढ़ सी आई हुई, नए नए देवी देवता पता नहीं कहां से प्रकट हो रहे। एक समय था संतोषी माता का बड़ा नाम था, अब लोग भूल गए हैं। नहीं सच है कि नहीं सच है? संतोषी माता का नाम कितने लोगों ने सुना है? अब ये संतोषी माता का शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं। आप सुनिए ना, भगवान ने इसी दसम स्कंद में 12 नाम गिनाए हैं दुर्गा के, लेकिन संतोषी माता का नाम कहीं नहीं है। वो तुम्हारे एक इस्कॉन के लाइफ हिमर थे, फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर, उन्होंने ये फिल्म बनाई थी जय संतोषी माँ। तो बता रहे थे हम लोग जब बंबई में थे जुहू में, तो बता रहे थे भक्तों से कि फिल्म तो हमने बना दी जय संतोषी माता, लेकिन इसका कोई खरीदार नहीं था, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा था। लेकिन किसी तरह से जब एक फिल्म रिलीज हुई तो ये हिंदुस्तान की पब्लिक ऐसी है किसी को देवी देवता भगवान मान लेती है, हिंदुस्तान भिड़िया था सच। वही संतोषी माता हिट हो गई, कहीं हमारी फिल्म हिट हो गई, और जय जय संतोषी माता जय जय माँ। ये सच्चाई है। आप रात में चले जाइए, कोई चिकना सा पत्थर ले करके किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए, ऐसा पीपल जिसे कोई नहीं पूछता, वहां पे फूल माला चढ़ा करके टीका उटा लगा करके आप थोड़ा सा करके आए, और सुबह वहां भीड़ लगनी शुरू हो जाएगी। ऐसा भी होता है। आप कहीं जाकर परिक्रमा करना शुरू कर दे तो लोग यही सोचेंगे जरूर कोई बात है, परिक्रमा कर रहा है, सब परिक्रमा करने, कोई पूछेगा नहीं परिक्रमा क्यों की जा रही। अंधविश्वास। बंबई में एक माता है छुई मुई माता, जरी मरी माता, सब लोग पता नहीं कहां से नाम ढूंढ लेते हैं, मंदिर बना दिए हैं। कुछ लोग तो क्रिकेटरों का मंदिर बना दिए हैं, कहते यही भगवान है, राइट। साउथ इंडिया फिल्म स्टारों का मंदिर बना लेते, सोचो जिसको चाहते हैं उसी को भगवान बना देते हैं। तो ऐसे नकली भगवानों से हमें क्या रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, ऐसे गुरुओं से सावधान कि ये भी नरक में जाएंगे, अपने श्रोताओं को भी लेके जाएंगे। उद्देश्य क्या है ये बहुत आवश्यक है। आप ऐसे कथावाचकों के जाइए कि हम कथा करवाना चाहते हैं तो 15-20 लाख का ठीका बताएंगे, और टेंट का इसका सब खर्च ना करना पूरा लेकर के बहुत पैसा खर्च लगाते, राइट। कहते हम परिचित महाराज की परंपरा को बढ़ा रहे हैं, सोचने वाली बात। परिचित महाराज तो 7 दिन 7 रात बिना खाए पिए कथा लगातार सुने थे, न तुम सुना सकते हो न सुनने वाला सुन सकता है। कहते हम परंपरा सुना रहे, गलत। तो कथा सुनिए उनसे जो परंपरा से आता है, जो कृष्ण मानव भाई भक्त एज इट इज जो संदेश देता है, ज्ञान देता है, तब प्रभावित होगा। आज देखिए प्रभुपाद जी की वजह से लोग परिवर्तित हो रहे हैं। आप लोग यहां बैठे हैं, आप खुद सोचिए कि जब आप इस कान से नहीं जुड़े थे, भक्तों से नहीं जुड़े थे, गीता नहीं पढ़े थे, तो आप क्या कर रहे थे, क्या स्थिति आपकी, आप में परिवर्तन आया कि नहीं आया। तो जुड़ने से परिवर्तन, जब सही गुरु मिलता है तो इसलिए गुरु प्रामाणिक गुरु से ही कथा करना चाहिए, सुनना चाहिए, जो खुद नियम का पालन करता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस भारतवर्ष के लोग जो हैं पतित हो चुके हैं, मांसाहार में, नशा में, अवैध समन में, जुआ में, अब लोग क्या है लिप्त होते चले जा, संख्या बढ़ती जा रही, कम नहीं हो रहे। जितने कुछ तथा के धन धुरंधर भी हैं वो भी मना नहीं करते, उनके तो कथा के पास चाय पाए पान की व्यवस्था रहती है, वही नहीं कहते आप चार नियम का पालन करो, बस मुझे अपना गुरु मुझे भगवान मान लो तो आप सही है। जिसको जो मंत्र जपना जप करो, जिसको जो खाना खाओ, जिसको जो करना करो, मुझे अपना गुरु मान लो। आप सुनिए ना, ऐसा चल रहा है, तो इससे ये अच्छा नहीं है, समाज के लिए ये अच्छा नहीं है। समाज तब सुखी होगा जो समाज के निर्माता हैं, जो पूरे संसार के निर्माता हैं, जो धर्म के प्रतिष्ठापक हैं, भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने गीता में ये कहा है कि मन मना भव मद भक्त मद्याजी माम नमस्कार, अपना मन मेरे में लगाओ, भौतिक संसार में मन मत लगाओ। लेकिन लोग भगवान की बात नहीं मानते। आप ये सोच रहे होंगे कि खूब प्रचार हो रहा है, अभी दिल्ली की इतनी जनसंख्या है कि हम लोग बहुत कम लोग पहुंच गए हैं। ऐसे से लोग हैं जिनको गीता के बारे में पता ही नहीं कि गीता में है क्या चीज। अभी दो दिन पहले हम एक परिवार के पास गए थे, उन लोगों को पता ही नहीं कि गीता में है क्या चीज। वो लोग, उनके दिमाग था गीता एक धार्मिक पुस्तक है जो पूजा घर में रख कर वो पूजा वूजा करते हैं, उसमें क्या लिखा है उसका क्या होता है कुछ पता नहीं। जब घर में मंदिर देखा तो सब देवी देवता पूरा खिचड़ी बना करके रख दिया है, किसी के न पानी रखा है, न फूल रखा है, न फल रखा है, एक कटोरी में मिश्री इलायची रख दिया है, दिन भर लोग चबाते रहे आपस में। और जब हम गए तो दुनिया भर के काजू बादाम पिस्ता फल फूल काट कर रख दिया, और ठाकुर जी बेचारे मिश्री चबा रहे हैं। डेढ़ घंटा जो है फिर उनको प्रचार किया, तब उनकी आंख खुली। उनका अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छा फल मिले तो कम से कम भगवान के पास फल रखो। लोग क्या करते हैं, फ्रिज में फल रखे हैं, अब भगवान के सामने एक केला भी नहीं रखते, सोचने वाली बात। तो इसलिए गृहस्थों को यदि आप अपने घर में भगवान को पलट रखिए मत, अगर आप रखते हैं तो उनकी पूजा करना सम्मान करना जानना चाहिए। पहले भक्तों से मिल करके समझिए कि ठाकुर जी को हम अपने घर में रखना चाहते हैं, उनकी सेवा कैसे करना चाहिए। वो तो जाएंगे वृंदावन में खरीद के लाए रख दिए, ऐसे रखने से आप पूजा की विधि आनी चाहिए, भोग लगाने की विधि आनी चाहिए, भगवान क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं ये आपको जानना चाहिए। नहीं तो कोई है लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहा है आपसे, कि भगवान इससे नहीं प्रसन्न होते। भगवान प्रसन्न होते हैं जब आप भगवान को सम्मान देते हैं। ठाकुर जी को लाते हैं लेकिन ठाकुर जी के सामने बैठने के लिए समय नहीं निकालते। हम आपको ले जाए अपने घर, अब बैठा दे सोफा पे, अब खुद ना बैठे, पानी भी ना तक पूछे, फल फूल तो दूर की बात है, आपको अच्छा लगेगा? यही हो रहा है कि भगवान को ले आए वृंदावन से हरिद्वार से ऋषिकेश के बैठा दिया, अब खुद बैठने के लिए टाइम नहीं है, खिलाने के लिए टाइम नहीं, पानी पिलाने के लिए, दूध का भोग लगाने के टाइम है ना। अब जब कभी समय निकाल के अगरबत्ती दिखाएंगे सब कुछ तेरा, भगवान जानते नहीं कि फल भरा हुआ है अपने खजाने में, हमको कहता सब कुछ तेरा। ऐसे थोड़ी होता है, झूठी भक्ति नहीं चलती। इसीलिए संसार का उन्हें पतन हो चुका है, लोग गिर चुके, उनको पता ही नहीं। पता तब होगा जब आप मंदिर में आएंगे, भक्तों के साथ बैठेंगे और समझाएंगे। इसलिए जो हमारे इस्कॉन से जुड़े भक्त होते हैं, कांग्रेगेशन डिवोटीज जिसको हम बोलते हैं, आप उनके घर में जाइए, अंतर दिखेगा आपको, दिखेगा नहीं दिखेगा, ऐसा है। उन्होंने शुरू कर दिया, हमको कल से ठाकुर जी के सिस्टम बनाया कि बीच में राधा कृष्ण को सेंटर में रखो, बाकी जितने भी देवी देवता है उसके स्तर नीचे से बना कर, सब किस्ती अलग अलग होती है, समझाया। डेढ़ घंटा दिया उनको, और डेली जो है भगवान को फूल और फल जरूर रखिए, मंदिर जाते हैं तब फल ले जाते हैं, अपने घर में भगवान रखे फ्रिज में रखे उनको नहीं चढ़ाएंगे। आपके घर में जो भगवान है, अब मंदिर में जो भगवान है, भगवान में अंतर नहीं होता, भगवान वही होते हैं, भगवान की शक्ति वही होती है, सेवा करने का अंतर होता है। अपने घर में भगवान बैठे हैं भूखे मर रहे हैं, अब मंदिर जा रहे हैं केला लेके जा रहे हैं ठेला लेके जा रहे हैं, आप खुद सोचिए इस बात को। अगर अपने घर में भगवान की भक्ति करना शुरू कर देंगे, उनको सम्मान देना शुरू कर देंगे, कैसे उन आरती दिखाई जाती है, कैसे भगवान को ऑफर किया जाता है, ऑफरिंग किया जाता, तो आपको वही आनंद मिलेगा जो आनंद मंदिर में आने से मिलता है। मंदिर में से आनंद क्यों मिलता है? इसलिए कि ठाकुर जी की बराबर सेवा होती है, कीर्तन होता है, प्रवचन होता है, पूरा वातावरण हरिनाम से क्या होता है, पवित्र रहता है, इसलिए से होता है। यही आपके घर में भी करना चाहिए, अब तो वही वातावरण आपको मिलेगा। और ऐसे घर हैं जो इस कांच में जिन्होंने कि पूरा इन्वायरमेंट चेंज कर दिया हुआ है ना। यहाँ पे वो जो स्वीट वाले थे उनके घर में, नाम भूल गया, जब यहाँ का प्रेजेंट थे उनके घर जाते थे, इतना सुंदर मंदिर पूरा एक कमरा दे दिया हुआ है ठाकुर जी के लिए, पर्दा बनाया, इतना सुंदर। आप लोग याद होना चाहिए मुझे, नाम भूल गया उनका, बहुत पहले की बात, उनके घर। और उनकी वाइफ पूरा भक्ति वो बिजी रहती सिर्फ भगवान की सेवा, इतना सुंदर सिंगार। कोई ऐसे मुरली कृष्ण प्रभु के घर में जाए, जितने हमारे जो इस्कॉन से जुड़े भक्त हैं उनके घर में जाइए, पूरा इन्वायरमेंट चेंज कर दिया। जो नहीं आ पाते वहीं पे मंगल आरती दर्शन आरती गुरु पूजा करते करते नहीं करते। तो यही प्रभुपाद चाहते थे। तो इसलिए संसार को बदलने के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ये आप जान लीजिए। हम तो अपना आनंद ले रहे हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी कि घर घर जा करके प्रचार करना चाहिए। तो आप सब भक्तों से ये अनुरोध है कि आप लोग प्रचार करने के लिए जरूर समय निकालिए, जोड़िए लोगों को, तब संसार का उद्धार होगा। यही चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। चैतन्य महाप्रभु यही चाहते है कि भारत भूमि हरि जनजान जन्म सार्थक करि कर परोपकार। परोपकारी उसे कहा जाता है जो पूरे संसार के जीवों को कल्याण करने की सोचता है। जैसे प्रभुपाद जी ने इतनी तपस्या की, इतनी मेहनत करके ग्रंथों लिखा, किसके लिए? अपने लिए, पूरे संसार के लिए, पूरे जगत के। इसलिए कुछ जगत गुरु है। आज पूरे संसार में प्रभुपाद जी की पूजा हो रखी है कि प्रभुपाद जी पूरे जीव के कल्याण करने के लिए संस्था का स्थापना की, वो निकले। हमारा भी यही कर्तव्य है कि हम प्रभुपाद जी के चैतन्य महाप्रभु के संदेश को जन जन तक पहुंचाएं। आप देखेंगे, आप पंजाबी बाग में रहते हैं, पंजाबी बाग में ही आप जाके देखेंगे तो ऐसे लोग हैं जो लोग भक्ति करते ही नहीं है। आजकल तो सब मांसाहारी सब हो रहे। आपके पास पड़ोस में आप जाइए देखिए, ये सब राधे राधे बड़े बड़े जो सेठ होते देखते हैं बड़ा अच्छा लगते हैं, है ना। जाए खुद राधे राधे करेंगे, खुद नाचेंगे, गंगा जी टीट लगाएंगे, लेकिन उनके जब कारनामे सुनेंगे तब पता चलेगा क्या होता है ना। मांसाहार भी करते हैं, शराब भी पीते हैं, सब काम करते हैं, राधे राधे भी करते हैं। वृंदावन जाके इतनी भीड़, इतनी भीड़, लेकिन जैसे दिल्ली आ जाते हैं अपने काम लग जाते हैं। तो ऐसे लोग हैं इस संसार में, बड़े बड़े दानवीर भी आपको मिलेंगे, लेकिन उनके जब काम सुनेंगे तो आप कान खड़े हो जाएंगे, चाहे ऐसा काम करता है। आप समझे, दुनिया में बड़े विचित्र लोग हैं। तो ऐसे लोगों को भी हमारे प्रभुपाद जी ने क्या किया, भक्त बना दिया, वैष्णव बना दिया। हमारे विदेशी भक्त नाचने लगे, देखा धोती कुर्ता पहन लिया, सब जो खाते थे पीते थे नशा करते थे सब छोड़ दिया। प्रभुपाद जी ने इस तरह से प्रेरित कर दिया कि अब वो वैष्णव बन गए। उनके मुख से अगर कथा सुनेंगे तो आपका क्या होगा, कल्याण होगा, उद्धार होगा। तो हर व्यक्ति जो है सुधर सकता है, लेकिन सुधरने के लिए सही गुरु के पास जाना होगा, उस संस्था जुड़ना चाहिए जो संस्था प्रामाणिक है, एक परंपरा से आई। जैसे इस्कान, इस्कान का असर पूरे वर्ल्ड में है, लोग जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद फिर अच्छा लगता है। तो अच्छा मार्गदर्शक वही कर सकता है जो प्रामाणिक गुरु से मार्गदर्शन ले रहा है। हमारे प्रभुपाद जी ने जो शिक्षा दी है उस शिक्षा को हमें खुद ग्रहण करना है और वही शिक्षा को क्या करना, आगे बढ़ाना। वही प्रभुपाद जितना बड़ा जो तात्पर्य लिखा है, प्रभुपाद जी का उद्देश्य यही है समझाने का कि हमें अपना जो आचरण है शुद्ध होना चाहिए। जो जिसका वैष्णव आचरण है ऐसे ही लोगों से हमें कथा सुननी चाहिए, वही प्रभावित हो सकता है जो अपने आचरण से प्रचार करता है। तो बहुत आवश्यक है, जैसे इसमें भगवद गीता का मैराथन चल रहा है, तो प्रभुपाद जी का ही उद्देश्य था कि घर घर तक हमारे भक्त जाएं और गीता को पहुंचाएं, क्योंकि गीता ही ऐसा ज्ञान है जो अज्ञानता को दूर कर सकती है। क्योंकि भागवतम में और भगवद गीता में दोनों में एक बात बताई गई है, एक ही। भगवद गीता में तो एक चैप्टर ही है असुर स्वभाव के लोगों के बारे में, भगवान ने उसमें असुर स्वभाव के लोग कैसे होते हैं और दैवी स्वभाव के लोग कैसे होते हैं उनका पूरा खाका खींच रखा है। और वही चीज श्रीमद् भागवतम ही बताया गया कि जो संसार है दो प्रकार के लोगों से ही, दो प्रकार के लोग होते हैं, आश्रित स्वभाव वाले और दैविक स्वभाव वाले। तो अपने आप को देखो कि हम, हमारा स्वभाव कैसा है। सारा लक्षण भगवान ने समझा दिया गीता के सत्य, भागवतम में भी बात बताई गई जिसे नारद जी समझाते हैं। तो आप देखेंगे कि 99% लोग क्या है, आसुरी स्वभाव, ईर्षा करना, द्वेष करना, क्रोध करना, लोभ में फंसे रहना, कामनाओं में भागना, आलस करना, सोते रहना, ये सब आसुर प्रवृत्ति के लोग हैं। और आप देखेंगे लोग इसी में फंसे हुए हैं। जब सोने का समय होता है तो लोग जागने का काम करते हैं, जब जागने का काम होता है तो लोग सोते हैं, एकदम पतित हो चुके हैं, पूरा सिस्टम शास्त्र के खिलाफ चल रहा है। तो ऐसे आवश्यक स्वभाव के लोगों को एक ही परिवर्तन कर सकता है, आपका संग, वैष्णव संग अपना दे करके, भगवद गीता का ज्ञान दे करके ही उनका उद्धार किया जा सकता है। इसीलिए प्रभुपाद जी चाहते थे कि भगवद गीता घर घर तक पहुंचनी चाहिए और लोग इसको पढ़ेंगे तो उनकी आसुरी जो प्रवृत्ति है क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। प्रभुपाद जी ने करके दिखा दिया। हमारे जो विदेशी भक्त हैं ये पहले हिप्पीस थे, हिप्पी उसे कहा जाता है जो सारा पाप करता है, चार प्रकार के पाप बताए गए हैं, जो सारे पाप में क्या रहता है, लिप्त रहता है। लेकिन प्रभुपाद जी ने भगवद गीता के ज्ञान दे करके, अपना संग दे करके उनको भी क्या कर दिया, पवित्र कर दिया। उनके अंदर जो आश्रित लक्षण थे सबको क्या कर दिया, भगा दिया और दैवी गुण ला दिया। और तब उस गए नाचते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। शास्त्र में तो हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु उनकी मंडली मिल करके जगाई मदाई तक का भी उद्धार कर दिया। सच है कि नहीं सच? जगाई मदाई जो सारा कुकर्म करते थे लेकिन उनका भी उद्धार कर दिया। नामाचार सिद्धराज ठाकुर वैश्या का उद्धार कर दिया क्योंकि खुद उनको गिराने के लिए आई थी लेकिन उन्होंने इस तरह से हरिनाम के प्रभाव से उसका भी क्या कर दिया, उद्धार कर दिया। तो प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ा कार्य किया, वही कार्य हम सबको करना है। तो हम सब तभी परिवर्तित कर पाएंगे जब हम स्वयं क्या रहेंगे, परिवर्तित रहेंगे। अर्थात अगर हमारा जो है आचरण अच्छा रहेगा, चरित्र अच्छा रहेगा, कृष्ण भावना भावित रहेंगे, आनंद रहेंगे, तब हम दुनिया को परिवर्तित कर सकते हैं। बहुत आवश्यक है, इसलिए हर भक्तों को जो प्रभुपाद जी की परंपरा में है बड़ा सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि हम वैष्णव हैं, वैष्णव ड्रेस में रहते हैं, इसलिए हमारा उठना बैठना बोलना एक वैष्णव ड्रेस में। अगर कोई गाली दे के बात करे, रे की बात करे, कसरे क्या है ऐसा बोलता है तो अच्छा नहीं लगता है। ये तो बाहर की दुनिया ऐसे के लोग बोल रहे हैं, अगर हम वैष्णव भी इसी तरह से बोलेंगे तो फिर क्या, फिर वैष्णवता से क्या मतलब है? आप सुनिए ना, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए वैष्णव को प्रजप से भी क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। शब्दों का चयन उत्तम होना चाहिए। ऐसा सारा चीज चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु स्वयं भगवान श्री राम इस धरती पर आकर के सिखाया कि एक मनुष्य का व्यवहार आचरण सबके प्रति कैसे होना चाहिए। भगवान स्वयं कृष्ण ही राम के रूप में आए, एक साधारण मनुष्य के रूप में आकर के शिक्षा दी। यहां लोग राम राज चाहते हैं लेकिन राम का जो आचरण है वो नहीं अपनाना चाहते। सच है नहीं सच है? सब चाहते कि राम राज आए, दैहिक दैवी भौतिक जो तीन प्रकार के ताप बताए गए हैं प्रभुपाद तात्मा लिखा है, इससे हम विचलित हो जाए कि भगवान राम जो राजा थे तो ये तीनों ताप नहीं थे उनके राज्य में। सोचने वाली बात, ऐसा राजा होना चाहिए। और आजकल स्थिति क्या है कि राजा ही सारे तापों में घिरा हुआ है, वही करप्ट है। जब राजा ही इस तरह से हो तो प्रजा कैसे सुखी रहेगी? इसलिए प्रचार की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है प्रचार की। तो हम लोगों का चैतन्य महाप्रभु ने इस सबको सलाह दी है कि सर्वश्रुति व्यक्ति से ही भगवान का गुणानुवाद सुना जाए। इस चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि भगवान कथा उनसे सुनिए जो स्वरूप शुद्ध है, कृष्ण भावना भावित है, जिनके आचरण में कथन में और करने में अंतर नहीं है। प्रभुपाद जी इसलिए प्रभावशाली रहे कि उनकी कथन में और करने में अंतर नहीं था, तभी असर पड़ता है। क्योंकि जो श्रोता है उसको आप धोखा नहीं दे सकते कि वो सब देख रहा, वो न बात करे न बोले अलग बात है लेकिन समझते सब हैं किसका आचरण कैसा है, इसका व्यवहार कैसा है। इसलिए हर वैष्णव का व्यवहार और आचरण बहुत ही उत्तम होना चाहिए, नहीं सिर्फ ड्रेस पहनने से थोड़ी कुछ होता है। अगर आप उस ड्रेस में हैं तो उस ड्रेस का क्या करिए, आदर करिए, तो अपना आचरण और व्यवहार क्या रखिए, शुद्ध रखिए, पवित्र रखिए, तब देखिए कितना प्रभाव पड़ता है प्रचार। यही कारण है कि जब प्रभुपाद जी शरीर छोड़ के चले गए तो प्रभुपाद शिष्यों ने कितनी मेहनत की। प्रभुपाद जी 108 मंदिर बना कर गए थे लेकिन प्रभुपाद जी ऐसा शिक्षा सब व्यवस्था कर गए थे कि आज ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा नहीं बढ़ता जा रहा। तो हम प्रभुपाद जी के अनुसार, चैतन्य महाप्रभु के अनुसार अगर हम अपना जीवन चरित्र बनाकर रखेंगे तो इसका असर समाज को दिखेगा, जो कि दिख रहा है। तो आप सब भक्तों से यही अनुरोध है कि चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में जितना भी हम उतारेंगे उसका प्रभाव क्या होगा, दूसरों का परिवर्तन हो जाएगा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि पहले हमें अपना कल्याण करना चाहिए, राइट, भक्ति करनी चाहिए और फिर दूसरों को भक्ति देना चाहिए। तो जब हम आनंद रहेंगे तभी दूसरों को आनंद दे सकते हैं। तो हमें खुद आनंद में कैसे रहना चाहिए, ये सारी शिक्षा भगवद गीता और भागवतम में और चैतन्य चरिता में जैसे दिव्य ग्रंथों में दिया गया है। और प्रभुपाद जी ने इसीलिए पूरी दुनिया को बदल दिया कि प्रभुपाद जी खुद आनंद में रहे, शुद्ध भक्त यही लक्षण होते। सिर्फ प्रभुपाद जी लाइक टच स्टोन, पारस पत्थर की तरह श्री प्रभुपाद जी, कि जो उनसे जुड़ गया वो प्रभुपाद जी कृष्ण का भक्त बन गया, समझ, ऐसा चमत्कार। ये सारे गुरु ऐसे नहीं आए कि प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज की बात को अच्छा से स्वीकार किया। क्योंकि हम लोग गुरु परंपरा से आते हैं तो अपने गुरु की आज्ञा जो है उसके अनुसार ही अपना जीवन क्या करना चाहिए, चलाना चाहिए। तो प्रामाणिक गुरु से अगर हम कथा सुनेंगे तो उसका असर दिखेगा। तो ये प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हमें कथा किससे सुननी है इसका हमें जानकारी होनी चाहिए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? चलिए फिर। हरे कृष्ण। ग्रंथराज सिंह भागवतम की, सब लोग प्रचार में लग जाए प्रसाद पाने के लिए।